नमस्कार भारत, तारीख 10 जून दिन शनिवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में बहुमत गंवाने के बाद टेरेसा मे ने मिलाया डीयूपी से हाथ, बोली तय वक्त पर शुरू होगी ब्रेक्जिट पर बातचीत।
इफ एज द इंडिकेशंस हैव शोन इफ दिस इज करेक्ट दैट द कंजर्वेटिव पार्टी हैज वन द मोस्ट सीट्स।
मध्य प्रदेश में शांति बहाली के लिए आज से उपवास करेंगे मुख्यमंत्री। किसान आंदोलन में जान गंवाने वालों के परिजन मांग रहे हैं इंसाफ।
हम ये चाहते हैं जिन पुलिस वालों ने जो ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए।
और विवेचना में बाद भारत के पिकासो यानी MF हुसैन की।
मैवरिक थे, तबीयत में एक बला की आवारगी थी, यानी अगर दिल्ली जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पे कलकत्ते की टिकट लेके कलकत्ता पहुंच जाते थे।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी को सबसे ज्यादा 318 सीटें मिली हैं, लेकिन प्रधानमंत्री टेरेसा मे के नेतृत्व में पार्टी स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर सकी है। प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा है कि वो अल्पमत की सरकार बनाएंगी और इसके लिए वो उत्तरी आयरलैंड की पार्टी DUP का समर्थन लेंगी। DUP को 10 सीटें हासिल हुई हैं। इस तरह 650 सदस्यीय निचले सदन में उन्हें 328 सांसदों का समर्थन हासिल हो जाएगा, जो बहुमत के आंकड़े 326 से ज्यादा है। ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा है कि वो अगली सरकार में अपनी मौजूदा कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल नहीं करेंगी। टेरेसा मे ने कहा कि ब्रेक्सिट पर बातचीत तय समय सीमा पर ही होगी। यूरोपीय संसद के सदस्य और जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के निकट सहयोगी एल्मार ब्रोक ने कहा है कि ब्रिटेन के लिए एक कमजोर प्रधानमंत्री के साथ ब्रेक्सिट पर बात करना चिंता पैदा करने वाला होगा। उन्होंने कहा,
I think it would be good if any of the parties would have a broad majority.
मैं समझता हूं कि अच्छा होता कि कोई भी पार्टी बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आती, ताकि इस आधार पर ब्रितानी प्रधानमंत्री ब्रेक्सिट पर यूरोपीय यूनियन के साथ मजबूती से बातचीत कर सकता। मुझे डर है कि मौजूदा हालात में उन्हें कोई भी ब्लैकमेल कर सकता है और उनके लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि वो ब्रेक्सिट पर ब्रिटेन के लिए बेहतर सौदेबाजी कर सकें। ये थे यूरोपीय संसद के सदस्य एल्मार ब्रोक के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर इतिहास में लंबे समय से आतंकवाद की फंडिंग करता आया है। ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों से कतर के साथ गतिरोध में नरमी लाने का अनुरोध किया है। ट्रंप ने कतर और अन्य देशों से कहा कि वे आतंक की फंडिंग तत्काल बंद करें। व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने कहा,
The nation of Qatar. Unfortunately, has historically been a funder of terrorism.
दुर्भाग्यवश कतर लंबे समय से आतंकवाद की बड़ी फंडिंग करता आया है। रियाद में हुए सम्मेलन में आए इस्लामिक राष्ट्रों ने मुझसे कतर के बारे में शिकायत की थी, इसलिए हमें फैसला लेना था। क्या हमें आसान रास्ता चुनना था या हमें कठिन लेकिन जरूरी कार्रवाई करनी थी? हमें हर हाल में आतंकवाद की फंडिंग रोकनी है। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। लंदन पुलिस का कहना है कि लंदन ब्रिज पर हमले के लिए हमलावरों ने 7.5 टन की लॉरी भाड़े पर लेने की कोशिश की थी, लेकिन ये तीनों व्यक्ति भुगतान की डिटेल नहीं दे सके और इस तरह से लॉरी इस्तेमाल करने की उनकी योजना पूरी नहीं हो सकी। पुलिस का कहना है कि इसके बाद उन्होंने छोटी वैन का इस्तेमाल किया। चैंपियंस ट्रॉफी में कल बांग्लादेश ने बाड़ा उलटफेर करते हुए न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 8 विकेट पर 265 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश ने 47.2 ओवरों में 5 विकेट पर 268 रन बनाकर मैच जीत लिया। बांग्लादेश के लिए सकीब अल हसन और महमूदुल्ला ने शतक बनाए। बांग्लादेश की टूर्नामेंट में यह पहली जीत है और उसने टूर्नामेंट में खुद को बनाए रखा है, जबकि न्यूजीलैंड टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। स्पेन के राफेल नडाल फ्रेंच ओपन में पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। नडाल ने डोमिनिक टीम को लगातार सेटों में 6-3, 6-4, 6-0 से हराया। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत आप सुन रहे हैं रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर भी लाइव।
बांग्लादेश क्रिकेट चढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इनकी पतंग थोड़ी सी परवान पकड़ रही है।
कहावत एक क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। ब्रिटेन में चल रही चैंपियंस ट्रॉफी में हर दिन ये बात साबित भी हो रही है। कल उलटफेर करने की बारी बांग्लादेश की थी। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। ब्रिटेन में अनिश्चितता सिर्फ क्रिकेट के मैदान में नहीं दिख रही है, राजनीतिक आसमान पर भी यही स्थिति है। संसदीय चुनाव के नतीजे आने के बाद कल लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कोर्बिन जब लंदन स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचे तो समर्थकों ने जोश में उनका स्वागत किया। 650 सीटों में से लेबर पार्टी ने 262 सीटें हासिल की हैं। बहुमत के लिए जरूरी 326 सीटों से ये आंकड़ा काफी कम है, लेकिन लेबर पार्टी 30 सीटें बढ़ाने में कामयाब रही है। वहीं बीते चुनाव के मुकाबले कंजर्वेटिव पार्टी की 13 सीटें घट गई हैं। कंजर्वेटिव पार्टी को 318 सीटें मिली हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री टेरेजा मे का वक्त से पहले चुनाव कराने का दांव उल्टा पड़ गया। बहुमत से 8 सीट दूर रहने के बाद टेरेजा मे ने कहा कि वो उत्तरी आयरलैंड की डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी यानी DUP के साथ मिलकर काम करेंगी। DUP ने 10 सीटें हासिल की हैं। उधर कोर्बिन का कहना है कि टेरेजा मे को पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा,
The Prime Minister called the election because she wanted a mandate.
कोर्बिन कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने चुनाव कराने का फैसला किया क्योंकि वो जनादेश हासिल करना चाहती थी। उन्हें जो जनादेश मिला उसमें कंजर्वेटिव पार्टी की सीटें कम हुई, उन्होंने मत गंवाए, समर्थन गंवाया और भरोसा गंवाया। उन्हें अब ऐसी सरकार के लिए रास्ता साफ कर देना चाहिए जो इस देश के तमाम लोगों का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती हो। इसे लेकर मैंने ब्रिटेन के संसदीय चुनाव पर नजर रख रही बीबीसी संवाददाता वंदा से बात की और पूछा कि कोर्बिन टेरेजा मे से पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं, टेरेजा मे की पार्टी इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रही है।
जहाँ तक टेरेजा मे की बात है, वो तो एक तरह से ये एक छवि दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वो एक स्टेबल स्थायित्व वाली सरकार देंगी, लेकिन अंदर ही अंदर जो पार्टी के भीतर है वो कई तरह के स्वर निकल के आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोच के चल रहे हैं कि अभी स्थिति बहुत ही पेचीदा है तो इसलिए फिलहाल अभी छेड़छाड़ न की जाए तो बेहतर रहेगा, फिर आगे देखेंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि जब उनकी जो पूरी अथॉरिटी है वो एक तरह से छिन गई, जिस चीज को लेकर वो आगे बढ़ी थी वही पूरा पलट गया, तो वो किस आधार पर प्रधानमंत्री बनी रह सकते हैं जब नई सरकार बनेगी। तो दोनों तरह के स्वर अभी निकल के आ रहे हैं।
और एक जो मिली जुली सरकार बनने जा रही है वो कितना कुछ काम कर पाएगी?
इसके कई तरीके हो सकते हैं कि एक फॉर्मल जो है वो उस तरीके से दोनों में गठबंधन बने, या फिर जिसे यहाँ पे कहते हैं कि इशू के आधार पर जब कोई बजट पास करना हो या इस तरह की सरकार गिरने की नौबत हो तो दोनों पार्टियां जो हैं, जो जो 10 जिसके सदस्य हैं पार्टी के नॉर्दर्न आयरलैंड की, वो इसको समर्थन दे सकती हैं। तो दोनों के बीच में थोड़ा बहुत पुराने समय में आपस में गठबंधन रहा है, कुछ मुद्दों पर दोनों की जो है वो मत एक जैसे हैं, लेकिन वो एक विवादित पार्टी भी है। तो अभी बहुत शुरुआती दौर है ये बताना कि किस तरह से आगे चलेगा।
जो वोटर्स हैं उनका अपना मूड क्या है, क्योंकि पिछले 4-5 साल के दौरान 2 रेफरेंडम 2 इलेक्शन लोग देख चुके हैं, वो क्या सोच रहे हैं?
एक तरह से असमंजस वाली स्थिति लोगों में है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 2 पार्टियां हैं, ये कैसे काम करेंगी, अगर करेंगी तो ऐसा ना हो कि ज्यादा तालमेल ना हो पाए और फिर एक चुनाव की नौबत आ जाए, या फिर जो ब्रेग्जिट आने वाला है, डील आने वाली है, उसमें जो बहुत कमजोर स्थिति में ब्रिटेन जाए और एक कमजोर डील उसको मिले।
ब्रेग्जिट का सवाल पूरी दुनिया के लिए बड़ा अहम है और निगोशिएशन शुरू होने में सिर्फ 10 दिन का वक्त है, तो ब्रिटेन कितनी मजबूती में होगा, क्योंकि ये निगोशिएशंस वैसे भी आसान नहीं माने जा रहे थे ब्रिटेन के लिए।
जी बिल्कुल आसान नहीं है। आप ये समझिए कि पिछले साल ये फैसला एक तरह से रेफरेंडम हुआ था कि ब्रिटेन अलग होगा, उसके बाद से जो यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो तो अपनी पूरी पुख्ता तैयारी कर चुके हैं इसमें जो नेगोशिएशन होनी है, बातचीत होनी है उसके लिए। और ब्रिटेन को जो उम्मीद ये थी कि जब वो ये चुनाव के बाद एकदम बहुत मजबूती से उभर कर आएगा, वैसा हुआ नहीं है। उसकी स्थिति कम से कम बहुत बाहरी तौर पर तो एक कमजोर होती दिख रही है, और लोगों में डर यही है कि कोई ऐसी डील ना हो जिसमें उनके व्यापार पे, उनकी नौकरियों पे एक बुरा असर पड़े।
जानकारी दे रही थी बीबीसी संवाददाता वंदा। आगे बढ़ते हैं। चीन और रूस के दबदबे वाले संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ में भारत को पूर्ण सदस्यता मिल गई है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ की कजाकिस्तान में हुई बैठक में हिस्सा भी लिया। इसे लेकर बीबीसी संवाददाता हरिता कांडपाल ने चीन में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सैबल दास गुप्ता से बात की और सबसे पहले पूछा कि एससीओ में भारत की मौजूदगी क्या इस संगठन को प्रभावी बनाएगी।
बहुत ही बड़ा और प्रभावशाली तो होने जा रहा है, ये बात तो सच है, लेकिन एससीओ कर क्या रहा है? एससीओ आज तक, एससीओ की जब स्थापना हुई थी 2011 में, तब से सिर्फ एक ही फोकस रहा है कि टेररिज्म को बीट करना, इविल्स ऑफ टेररिज्म, रीजनलिज्म, सेपरेटिज्म। अब सवाल यह है कि क्या ये काम कर पाई है? अभी उन्होंने एंटी टेररिस्ट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये सारे कंट्रीज, रशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया के सारे कंट्रीज, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान करते रहते हैं। अब भारत भी करेगी, पाकिस्तान भी करेगा, तो इस माने में आप कह सकते हो कि चीन, रशिया और इन देशों के साथ और यहाँ तक के पाकिस्तान के साथ भी भारत को एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज या मिलिट्री एक्सरसाइज करने का मौका मिले।
बदले हुए वैश्विक समीकरण में क्या एससीओ को नेटो गठबंधन के जवाब के तौर पर या उसकी तरह ही एक बड़े गठबंधन के तौर पर देखा जा सकता है?
देखिए, पहले तो सवाल ये है, भारत 5 साल पहले जब रुचि बताई थी तब रशिया ने सपोर्ट किया था और चीन सपोर्ट नहीं कर रही। उसके बाद चीन ने कहा पाकिस्तान को आने दो, अगर पाकिस्तान आएगी तो हम भारत को भी लेंगे। इस तरह से भारत आया है, चीन ने खुशी से अपने हाथ नहीं खोल दिए। एक दूसरी बात यह है कि उस टाइम पे समीकरण अलग थे, 5 साल पहले जो भारत आना चाहती थी, आज परिस्थिति बदल गया है। आज भारत को एक और कारण है ज्वाइन करने, वो ये है कि अमेरिका आज उतना विश्वासपात्र नहीं रहा जितना पहले था। अब अमेरिका पे भरोसा कितना किया जा सकता है, ये सवाल है। एससीओ जब पहले बना तो सवाल यह है क्या वो एशिया का नाटो बनने जा रहा है और क्या वो चीन उसे कंट्रोल करेगा।
भारत का क्या फायदा होगा या कहें कि भविष्य में भारत इससे क्या हासिल करना चाहेगा?
भारत को न जुड़ने से क्या नुकसान है पहले तो ये सोचना चाहिए। चीन ने जब बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम किया तो भारत नहीं आया, लेकिन हर बार दुनिया भारत को बुलाया, हर बार भारत छुपा रहे, सामने न आए, तो एक सल्किंग वाला सिग्नल जाएगा कि भारत दुनिया से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है या डर रहा है। अगर भारत नहीं आता और पाकिस्तान चला आता तो क्या होता, तो भारत का इन्फ्लुएंस और भी कम हो जाता। इसलिए दुनिया के हाई टेबल में आपको बैठना जरूरी है, दुनिया के साथ आपको तालमेल रखना जरूरी है। इसलिए आज मोदी जी की जो मीटिंग शी जिनपिंग से साथ हुई और यहाँ तक के नवाब शरीफ के साथ हुई, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर टेम्परेचर कम करना है तो आपको दोनों को मिलना जरूरी है।
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है।
और अब रुख भारत का। मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन जारी है। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो शांति बहाली के लिए आज से उपवास शुरू कर रहे हैं। वहीं आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। भोपाल से शुरह नियाजी की ये रिपोर्ट।
मंदसौर के दिनेश पाटीदार के घर सन्नाटा पसरा है। दिनेश पाटीदार का 17 वर्षीय बेटा अभिषेक किसान आंदोलन की भेंट चढ़ चुका है। जब 6 जून को पुलिस ने आंदोलन कर रहे किसानों पर गोलियां चलाईं तो 2 गोली अभिषेक को भी लगी। प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें डॉक्टरों ने इंदौर रेफर कर दिया, लेकिन अभिषेक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उस दिन पुलिस द्वारा की गई फायरिंग को लेकर परिवार में गुस्सा है। दिनेश पाटीदार का कहना है कि उनका बेटा पुलिस की मनमानी का शिकार हुआ है और अब वह उसे मारने वालों के लिए भी सजा चाहते हैं।
पुलिस ने, हम तो ये देखते हैं कि पुलिस ने जो है बिगर सूचना के या पहले लाठी चार्ज करना या रबर की गोली चलाना या आसोगेट के गोले छोड़ना, ये कारण नहीं करते हुए डायरेक्ट तो गोली चलाई। यानी हम ये चाहते हैं जिन जिन पुलिस वालों ने जो ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए।
दिनेश पाटीदार के 3 पुत्रों में सबसे छोटा अभिषेक अपने पिता से इस आंदोलन में जाने का कहकर घर से निकला, दिनेश पाटीदार ने बताया कि किसानों का आंदोलन होने की वजह से उन्होंने उसे जाने की अनुमति दे दी, लेकिन उसके बाद गोली लगने की खबर घर पर आई।
नारेबाजी तो कर रहे थे, बच्चे थे, 17 साल की उम्र थी उसकी, नारेबाजी तो करते ही किसान का बेटा, मैं वो मेरे से पूछ के भी गया कि पापा मैं वहाँ चौपाटी पे आज आंदोलन है जो मैं वहाँ जाऊँ क्या, मोल लेकर सब जा रहे हैं, उनके जाओ बेटा किसान की बात कोई बात नहीं, अपने हक की बात रखना, तो ये नारे लगा रहे थे हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
मंदसौर में 6 किसानों की मौत के बाद हर तरफ आलोचना के शिकार हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज से शांति बहाली के लिए उपवास रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा,
कुछ घटनाओं से मन दुखी है, व्यथित है, क्योंकि मैं पत्थर दिल इंसान नहीं हूं, और इसलिए मैंने फैसला किया है कि कल 11 बजे से मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, बल्लभ भवन में नहीं बैठूंगा, मैं भैल के दशहरा मैदान पर बैठूंगा, जनता से किसानों से चर्चा करने के लिए बैठूंगा और शांति बहाली के लिए मैं उपवास करूंगा।
वहीं मध्य प्रदेश में हिंसा का दौर जारी है। गुरुवार को किसानों ने भोपाल से लगे सीहोर में जमकर उत्पात मचाया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस की गोली छोड़नी पड़ी। शुरह न्याजी, बीबीसी न्यूज भोपाल।
और स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी दिनेश उप्रेती, जो अखबारों के पन्ने पलट चुके हैं, तो उनसे जान लेते हैं क्या है सुर्खियां।
जी, आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इंडियन एक्सप्रेस समेत तमाम अखबारों ने पहले पन्ने पर छापा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि जिनके पास आधार नंबर है वो टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त उसका उल्लेख जरूर करें। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि जिनके पास आधार नंबर नहीं है उन्हें संविधान पीठ का अंतिम फैसला आने तक परेशान होने की जरूरत नहीं है।
कल हमने इस पर दिन भर में एक रिपोर्ट भी सुनाई थी।
जी, दूसरी खबर, भारत और पाकिस्तान के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने को भी तमाम अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है।
और बीबीसी की जो हमारी वेबसाइट है उस पर भी एक खबर लगी हुई है।
जी, वही कि मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वन बेल्ट वन रोड मुद्दे का जिक्र नहीं किया, बल्कि कहा कि उन्हें आमिर खान की फिल्म जंगल बहुत पसंद आई, दंगल बहुत पसंद आई। ये खबर जो है बीबीसी के पहले पन्ने पर भी
श्रोता आकर पढ़ सकते हैं।
जी
जी, और क्या खबर है?
इंडियन एक्सप्रेस ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के महात्मा गांधी पर दिए बयान को पहले पन्ने की सुर्खी बनाया है। शीर्षक है, बहुत चतुर बनिया था वो, कांग्रेस की कमजोरी जानते थे। दरअसल कल छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि गांधी चतुर बनिया था, गांधी को मालूम था कि कांग्रेस का आगे का हश्र क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने आज़ादी के तुरंत बाद कहा था कि कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए। नगा विद्रोही NSCNK के अध्यक्ष SS खापलांग के निधन की खबर भी कई अखबारों की सुर्खियाँ बनी हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन और टेरिजा मे की तस्वीर को छापते हुए शीर्षक दिया है, मे बी नॉट।
जी, बहुत अच्छा शीर्षक।
हिंदुस्तान टाइम्स ने ब्रिटिश संसद के चुनाव में जीतने वाली पहली सिख महिला प्रीत कौर गिल और पगड़ीधारी सिख तनमनजीत सिंह तस्वीर के साथ की तस्वीर छापी है और उसको पहले पन्ने पर जगह दी है।
और मैं बता दूं दिनेश जी कि हमारे श्रोता अगर ब्रिटेन चुनाव से जुड़ी खबरें पढ़ना चाहते हैं तो रुक कर सकते हैं bbchindi.com के पन्ने का, जिस पर विस्तार से सारी जानकारियां दी गई हैं। धन्यवाद दिनेश जी।
बीबीसी इंडिया बोल।
दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर IAS की परीक्षा पास करने वाली उम्मुल खैर।
बहुत आसान नहीं था मेरा सफर, आप भी जानना चाहेंगे UPSC में कामयाबी की क्या कुंजी है? बीबीसी हिंदी रेडियो के नौजवान श्रोताओं को बताऊंगी अपने संघर्ष और सफलता की कहानी। मैं उम्मुल खैर।
इस शनिवार 10 जून को शाम 7:30 बजे बीबीसी इंडिया बोल में। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 या फिर 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
श्रोताओं, जैसा आप जानते हैं कि भारत के पिकासो कहे जाने वाले मकबूल फिदा हुसैन को आधुनिक भारतीय चित्रकला का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। अगर ये कहा जाए कि विवादों और MF हुसैन का बहुत करीबी नाता था तो गलत नहीं होगा। देवियों के न्यूट्स बनाना, हमेशा नंगे पांव चलना, राह चलते दीवार रंग देना और अपने जीवन के अंतिम चरण में भारत छोड़ किसी और देश में बस जाना, MF हुसैन भारतीय चित्रकला के संभवतः सबसे बड़े शोमैन थे। हुसैन की छठी बरसी पर उन्हें याद कर रहे हैं रियान फजल आज की विवेचना में।
यही जाना कि कुछ नहीं जाना है, यही जाना कि कुछ नहीं जाना है, वो भी एक उम्र में हुआ मालूम।
सालों पहले लंदन में बीबीसी से बात करते हुए मकबूल फिदा हुसैन ने
ये शेर सुनाया था और सही मायनों में यही उनकी जिंदगी का फलसफा भी था। एक पुरानी यहूदी कहावत है, ईश्वर का वास तफसीलों में रहता है। ईश्वर के बारे में ये सच हो या न हो, हुसैन की कला का सच यही है। हुसैन की पूरी जिंदगी पर नजर दौड़ाएं तो जो चीज तुरंत आंखों को पकड़ती है वो कोई भारी भरकम विराट सत्य नहीं, बल्कि छोटी नगण्य और निरीह चीजें हैं जिन्हें इतिहास ने तो किनारे छोड़ दिया है, लेकिन हुसैन एक स्कूली बच्चे की तरह उन्हें अपनी जेबों में भर कर लिए चले जाते हैं। एक बार रूसी लेखक व्लादिमीर नोबोकॉफ ने एक महान कलाकार के लक्षण बताते हुए कहा था कि वो उस आदमी की तरह है जो मकान की नवी मंजिल से गिरता हुआ अचानक दूसरी मंजिल की किसी दुकान का बोर्ड देखकर सोचता है, अरे इसके तो हिज्जे गलत लिखे हैं। ये थे मकबूल फिदा हुसैन। कामना प्रसाद मशहूर लेखिका हैं और बहुत बड़ी उर्दू परस्त हैं। उनको हुसैन को बहुत नजदीक से जानने का मौका मिला था। मैंने उनसे पूछा कि आपकी और हुसैन की पहली मुलाकात कहाँ पर हुई थी?
सड़क पे हमने उनको देखा कि वो एक काली सी गाड़ी जो उनकी पुरानी गाड़ी थी उसको भारती नगर के सामने उस सड़क पे, पीछे से तो पहचाना नहीं गया कि वो उसको धक्का दे रहे थे, शायद वो स्टार्ट नहीं हो रही थी या जो भी, और अकेले थे। हम गाड़ी में थे तो हमने यूं ही गाड़ी रोक दी, मैंने सोचा शायद कोई किसी को जरूरत हो, तो वो फौरन आके बैठ गए। फिर अचानक मैंने कहा कि ओ माय गॉड यू आर MF हुसैन, तो बोले जी। फिर दूसरी दफा एयरपोर्ट पे और उसके बाद फिर दोस्ती हो गई, क्योंकि उनको ये लगा कि हाँ शायद मेरा उर्दू शेर व शायरी से कुछ ताल्लुक है या हम उर्दू शेर व शायरी या अपनी तहजीब के परस्तार हैं। और उनको भी बहुत शौक था, मौजू शेर पढ़ते थे और पुराने उस्ताद उनको बहुत याद थे।
हुसैन अपने जमाने के शायद सबसे महंगे पेंटर थे, लेकिन उनकी दरिया दिली के किस्से भी कम नहीं है। सुनीता कुमार एक मशहूर चित्रकार हैं और एक समय में मदर टेरेसा की प्रवक्ता रह चुकी हैं। उनके पति नरेश कुमार भारतीय डेविस कप टीम के कप्तान रह चुके हैं। एक बार उन्होंने हुसैन को राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता देखने के लिए दिल्ली आमंत्रित किया।
हम दिल्ली गए हुए थे और एक पार्टी पे हम थे और वो आ गए। मैं तो हमेशा उनकी फैन थी और जब अंदर आए तो वो तो टॉल और लंबे और बेफीट और उनके बाल जैसे उड़े हुए, बहुत स्ट्राइकिंग फिगर थी उनकी। उस टाइम दिल्ली हम गए हुए थे वो टेनिस चैंपियनशिप के लिए नेशनल्स। वो बोले मुझे कि मैं टेनिस का बहुत शौकीन हूँ। मैंने उनको इनवाइट कर लिया वो अगले दिन के लिए, क्योंकि वो फाइनल था। वो फाइनल में उन्होंने बोला ये जीतेगा, मैंने बोला ये जीतेगा। वो मैच था विजय अमृतराज और मैल एंडरसन। एनीवे मैं जीत गई तो उन्होंने कहा था कि अगर आप जीते तो मैं आपको अपनी एक पेंटिंग दूंगा और अगर मैं जीता तो फिर आप मुझे अपनी पेंटिंग दीजिए। तो मेरे लिए तो ये बहुत जेनरस ऑफर थी, मुझे मालूम था कि विजय जीतेंगे।
और फिर वो पेंटिंग आपको मिली या नहीं मिली?
हाँ, मैं तो घबराहट से उनको पूछा भी नहीं कि बेट का क्या होगा। हम ओबेरॉय ठहरे हुए थे दिल्ली में, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं नीचे आई तो रिसेप्शनिस्ट बोलता है आपके लिए हुसैन साहब कुछ छोड़ के गए हैं। तो मैंने सोचा होगा चिट्ठी लिखी होगी थैंक यू कि आपने मुझे इन्वाइट किया। वो तो पेंटिंग निकली, बहुत बढ़िया पेंटिंग, ऑयल की उनकी घोड़े की। वो अभी थोड़ी गीली गीली भी थी क्योंकि वो ऑयल में किया, तो ऑयल तो इतनी जल्दी सूखता नहीं है ना।
हुसैन स्वभाव के फक्कर थे, उनको सनकी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके स्वभाव में एक किस्म की आवारगी जरूर थी।
एक्सेंट्रिक नहीं थे, मैवरिक थे। तबीयत में एक बला की आवारगी थी, यानी अगर दिल्ली जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पे कलकत्ते की टिकट लेके कलकत्ता पहुंच जाते थे।
सुनीता कुमार बताती हैं कि कितनी बार हुआ है कि वो कोलकाता में उनके घर से हवाई अड्डे जाने के लिए निकले हों और हवाई अड्डे से वापस घर आ गए हों।
वो तो एयरपोर्ट जाते थे और रास्ता में बोलते थे मेरा दिल नहीं कर रहा। एक दिन तो उन्होंने रास्ते में ड्राइवर को बोला कि आप रुकिए, अभी मैं इधर ही आराम कर लेता हूँ। तो ड्राइवर सोचा कि कहाँ आराम करेंगे, तो बिल्कुल पेड़ हैं और फील्ड्स हैं एयरपोर्ट जाने के टाइम में। तो वो गाड़ी से उतर के और वो जमीन पे अपना बैग रख के तो सो गए।
इसी तरह का एक वाकया एसके मिश्रा के साथ हुआ था। मिश्रा प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के प्रधान सचिव रह चुके हैं। उस जमाने में वो इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक हुआ करते थे। उन्होंने साइप्रस में हुसैन के चित्रों की एक प्रदर्शनी लगाई थी, जिसमें वहां के राष्ट्रपति को भी आमंत्रित किया गया था।
साइप्रस में उस वक्त मैं ITDC में था, तो हम एक होटल सेटअप कर रहे थे लिमसॉल में। तो मैंने सोचा कि इसको पब्लिसिटी के लिए मदर टेरेसा की एग्जीबिशन लगाए निकोसिया में। तो मैंने हुसैन से कहा कि अपने पेंटिंग्स वहाँ ले चलो। कहें ठीक है। प्रेसिडेंट साइप्रस के पियानो से मेला इनाग्रेट करने के लिए वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बड़ी पब्लिसिटी दी हुसैन को। अब जब एग्जीबिशन का डेट था, उसके एक दिन पहले में कहीं हुसैन का नज़र ही नहीं आ रहा। हमने कहा क्या हो गया उनको। फिर शाम को लास्ट फ्लाइट पे आ रहे हैं, बड़ा तो हमने हुसैन पेंटिंग्स कहाँ, कहने अगले फ्लाइट से आ रहे हैं। हमने अगला कोई फ्लाइट ही नहीं है। मैं बहुत नाराज। कहने लगे चलो अच्छा खाना खाने चलते। हमने कहा तुम खा लो जाके खाना, मैंने खाता। आई वाज वेरी एंग्री। हमने कहा तुम नहीं आते तो मैं कह देता हुसैन को हार्ट अटैक हो गया, नहीं आ पाए। अब मैं क्या जवाब दूंगा, प्रेसिडेंट को सबको बुला रहे हैं, उनके शक्ल पर कोई असर ही नहीं। खैर सुबह उठे वो मेरे कमरे में आए, कहने चलो ब्रेकफास्ट करने चल जाओ। खैर हमने कहा चलो। कहने वो एग्जीबिशन कहाँ होना था। हमने कहा ये एकेडमिक क्वेश्चन क्यों पूछे हो, उससे क्या हुआ। कहने नहीं मैं किस हॉल में होना था। खैर वो हॉल ले गए, देखा सारे कोई 13 कैनवासेस लटके हुए और पेंट ड्रिप कर रहा था कईयों में। रात भर उन्होंने पूरा एग्जीबिशन नए सिरे से वो किया।
हजरत निजामुद्दीन में जकी मियां का चाय का एक ढाबा हुआ करता था, अब है या नहीं पता नहीं। जकी मियां हर सुबह दूध से तरोताजा मलाई की प्लेट बचाकर अलग से रखते थे। क्या पता किस वक्त मलाई के शौकीन हुसैन पहुंच जाएं। खाने पीने के अनोखे अड्डे और जगहें उन्हें बचपन से ही आकर्षित करते थे। उनका एक और शौक हुआ करता था मिट्टी के कुल्हड़ में कढ़ाई के औंटते दूध की धार से निकलती सोंधी खुशबू का आनंद लेना।
वो छठ में हमारे यहाँ, हम बिहार से हैं, हमारे यहाँ वो बनते हैं ठेकुआ, वो आटे से घी से गुड़ से, और वो बहुत पसंद था उनको, तो वो उसकी हमेशा फरमाइश करते थे। और वो नाम तो भूल जाते थे, तो वो कहते थे वो जो बिहारी डोनट है ना वो लेते आना।
2005 में हिंदू कट्टरपंथियों ने उनकी एक पेंटिंग की नुमाइश में तोड़फोड़ की। उनकी धमकी की वजह से उन्होंने भारत छोड़ा, तो फिर अपनी मृत्यु तक वो वापस भारत नहीं लौटे। एक बार BBC ने उनसे सवाल भी किया कि क्या सोचकर उन्होंने हिंदू देवियों को न्यूड में पेंट किया।
वो आप जाके वहाँ एलोरा चले जाइए, महाबलीपुर में चले जाइए, उसका जवाब वहाँ है। और उसका वो क्या था, वो बहुत बड़ा जो हिस्टोरिकल जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो कम से कम कोई 30-40 पेज का है, वो पढ़ लीजिए। अब उसके अंदर मैं कुछ ऐड नहीं कर सकता। मैं आर्ट कर रहा था, मैं ये जानते नहीं था कि क्या है। सिर्फ आर्ट है और आर्ट यूनिवर्सल है। द इमेज जो नटराज जो बना हुआ है, वो नटराज सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, सारी दुनिया के लिए। महाभारत जो लिखी गई है वो कुछ खाली एक पागल संत साधुओं के लिए नहीं है या उसके लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।
विवेचना पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। श्रोताओं वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन विदा लेने के पहले मुख्य समाचार एक बार फिर दिनेश उप्रेती से।
BBC समाचार। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी को सबसे ज्यादा 318 सीटें मिली हैं, लेकिन प्रधानमंत्री टेरेसा मे के नेतृत्व में पार्टी स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर सकी है। टेरेसा मे ने कहा है कि वो अल्पमत की सरकार बनाएंगी और इसके लिए वो उत्तरी आयरलैंड की पार्टी DUP का समर्थन लेंगी। ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा है कि वो अगली सरकार में अपनी मौजूदा कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल नहीं करेंगी। टेरेसा मे ने कहा कि ब्रेक्सिट पर बातचीत तय समय सीमा पर ही होगी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर इतिहास में लंबे समय से आतंकवाद की फंडिंग करता आया है। ट्रंप की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों से कतर के साथ गतिरोध में नरमी लाने का अनुरोध किया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी देवाशीष कुमार के हाथ। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे इंडिया बोल में होगी। तब तक आपके साथ है bbchindi.com का पन्ना। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।